स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
नाम तेरा प्रभु सदा मैं गाऊं, नाम तेरा प्रभु सदा मैं गाऊं,
नाम तेरा प्रभु सदा मैं गाऊं।
है तू कितना दया का सागर, अपने इशारे से सृष्टि बनाई,
अपने इशारे से सृष्टि बनाई,
आकाश पृथ्वी तूने बनाई,
आकाश पृथ्वी तूने बनाई,
इस मानव को तूने बनाया,
इस मानव को तूने बनाया,
अपने बच्चों का तू ही रखवाला,
नाम तेरा
बनाए नभ के तारे,
तूने बनाए नभ के तारे,
सोचता हूँ तब देखूं जब जब,
सोचता हूँ तब देखूं जब जब,
क्या वो मानव जिसकी बला से,
क्या वो मानव जिसकी बला से,
अपने पुत्र को सूली चढ़ाया,
नाम तेरा प्रभु सदा मैं गाऊं, नाम तेरा
Thank you. न्याय करेगा यीशु सबका,
न्याय करेगा यीशु सबका।
तो आज अपने मन को फिराओ,
नाम तेरा
दया का सागर,
नाम तेरा प्रभु सदा मैं जाऊं, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा प्रभु
सदा मैं गाऊं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से अपने परिवार और मित्रों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन श्रोता मित्रों का जो हमारे कार्यक्रम को सुनकर प्रतिदिन अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाते हैं। मुझे आशा है कि आप सब भी इन दिनों परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी पत्र और फोन के द्वारा हमसे संपर्क करें ताकि मैं आपके साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे सकूं। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है ताकि हम अलग अलग स्थानों पर बैठ करके भी एक साथ आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इस समय जब हम जकरिया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता कीजिए ताकि जब वे आपके वचन को सुनते हैं तो आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, वे सत्यता को ग्रहण करने पाए, समझने पाए, अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार ढाल सकें, हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें। इस घड़ी हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय निराश, परेशान, चिंता, तनाव, दबाव और बीमार अवस्था में हैं। आप उनकी सुधि ले, उन्हें छुटकारा दे, अपनी शांति दे, ताकि आज का दिन निश्चित रूप से उनके जीवन के लिए आशीष का दिन ठहरे। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब जकरिया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम सब देख रहे हैं कि इसराइली जो परमेश्वर का चुना हुआ समूह है, परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण वे बंधुआई में चले गए और 70 वर्ष बेबीलोन की गुलामी में रहे और वे लौटकर आ गए, परंतु वे अभी भी परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि उन्हें आशीषें क्यों नहीं मिल रही है। यहां पर हम देखेंगे कि उन्होंने पूछा कि क्या वे उपवास रखना और विलाप करने की प्रथा का अंत कर दें। वे लौट करके आए हैं और अब परमेश्वर से उत्तर पाना चाहते हैं कि वे उपवास रखना और विलाप करना बंद कर दें या चालू रखें। परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके भी उन्हें क्या लाभ होगा, क्योंकि उनके बाप दादे तो सब प्रथाओं का पालन करते थे, परंतु फिर भी वे बेबीलोन की बंधुआई में चले गए। क्यों? क्योंकि उनके मन परमेश्वर से दूर थे। धर्म का स्वांग रचना आपको परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य नहीं बनाता है। मुख्य बात है परमेश्वर की वाणी सुनना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। इसराइल ने अपना मन कठोर किया था और परमेश्वर से हट किया, और यही कारण है कि वे बंधुआई में चले गए थे। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 8 से अध्ययन को आरंभ करेंगे। इस अध्याय का विषय है यरूशलेम के लिए परमेश्वर का उद्देश्य धार्मिक कार्यों के कारण नहीं बदलेगा। जी हाँ, अध्याय 8 में उनके प्रश्न के संबंध में परमेश्वर का तीसरा उत्तर दिया गया है। हम तो सब प्रथाओं का पालन करते हैं, परंतु परमेश्वर हमें आशीष क्यों नहीं देता है? परमेश्वर ने कहा, जब मन सही हो तो अनुष्ठान भी अर्थपूर्ण होते हैं। फिर परमेश्वर कहता है कि मन उचित नहीं है तो अनुष्ठान व्यर्थ है। कहने का अर्थ है कि महत्व अनुष्ठान का नहीं, मनुष्य के मन का है। कुछ टीकाकारों के अनुसार अध्याय 8 सकारात्मक उत्तर है, जबकि अध्याय 9 नकारात्मक उत्तर है। आपकी प्रथाएं और धार्मिक संस्कार परमेश्वर को अपने उद्देश्य से विचलित नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह अपना उद्देश्य एवं अपनी योजना पूरी करता है। मेरे मित्रों, इस अध्याय में 5 शब्द महान महत्व के हैं, जिन पर आप इस अध्याय के अर्थ को आधारित कर सकते हैं। पहला है सेनाओं का यहोवा। यह उक्ति इस अध्याय में 18 बार आती है। अतः स्पष्ट है कि परमेश्वर का महत्व अति महान है। दूसरा यरूशलेम, 6 बार तथा सियोन 2 बार आता है। यरूशलेम नगर आज भी वही भौगोलिक स्थान है, और परमेश्वर कहता है यरूशलेम, तो उसका अर्थ है यरूशलेम। और तीसरी बात है जलन। जलन शब्द 3 बार आया है। चौथा है बचे हुए इसराइली, अर्थात स्वदेश लौटने वाले इसराइली जो 12 गोत्रों से थे और संख्या में 60,000 मात्र ही थे। पांचवा यहोवा यों कहता है, यह शब्द 10 बार आया है। इसका अर्थ है कि यह परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य का नहीं। अतः यदि आपको मेरे मुंह के शब्द चुभते हैं तो वे मेरे शब्द नहीं हैं। मैं केवल वचन पढ़कर सुना रहा हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप जकरिया जैसी पुस्तक के कठोर वचन सुनने को तैयार हैं। मेरे मित्रों, अध्याय 7 में परमेश्वर ने इसराइल को 10 आज्ञाओं से तौला तो वे कम निकले। अतः अध्याय 8 में विशेष करके पहले 8 पदों में हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रजा इसराइल देश और यरूशलेम के निमित्त परमेश्वर की योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। आज परमेश्वर इसराइल के संबंध में कोई भी भविष्यवाणी पूरी नहीं कर रहा है। वह केवल कलीसिया के साथ व्यवहार कर रहा है। कलीसिया को इस पृथ्वी से उठा लेने के बाद, जो केवल परमेश्वर ही जानता है कि वह कब करेगा, वह इसराइल के साथ अपनी योजना पूरी करेगा। मेरे मित्रों, अध्याय 8 की भविष्यवाणियां केवल यह प्रकट करती हैं कि उनका वर्तमान में स्वदेश लौटना भावी स्वदेश वास की एक झलक मात्र है। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए जकरिया नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, सियोन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जल जलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है। जब परमेश्वर कहता है कि उसे जलन हुई, तब वह मनुष्य की नाई तो नहीं जलता है, परंतु उसमें जलन अवश्य उत्पन्न होती है। मुझे किसी स्त्री के लिए दुख होता है जब वह कहती है, मेरा पति मेरे लिए जलन नहीं रखता है। यदि उसकी बात सच है तो इसका अर्थ है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं अपनी पत्नी के लिए जलन रखता हूँ। मैंने उससे अपने लिए विवाह किया है और मैं उसे किसी के साथ नहीं बांट सकता। परमेश्वर इसराइल के लिए कहता है और आज कलीसिया के लिए भी कहता है कि मुझे बड़ी जलन हुई। यदि आपके मन में यह विचार है कि आप संसार के लिए, देह के लिए और शैतान के लिए जिए और रविवार के दिन परमेश्वर की सेवा करें, तो आपका सोचना उचित नहीं है। यदि आप उसकी संतान होकर ऐसा करते हैं तो वह आपको दंड देगा। जी हाँ, वह अपनों के लिए जलन रखता है और जो ऐसा जीवन जीते हैं वे उसकी संतान नहीं है। हमारे जीवन में पाप के बारे में वह कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और तब पहला योहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 9 पद में योहन्ना कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, हमें पापों को मानना आवश्यक है। यदि आप परमेश्वर के साथ संगति रखना चाहते हैं, सहभागिता में बने रहना चाहते हैं, तो निश्चय जाने कि आपको अपने पापों को मानना आवश्यक है। यदि आप अपने पापों को प्रभु यीशु के सामने मान लेते हैं, तब वह आपके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन जीते तो हैं, परंतु परमेश्वर के निकटता में अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, क्षमा नहीं मांगते हैं, और यही कारण है कि वे अभी भी कठोर बने हुए हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करके पाप नहीं कर सकते हैं। आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे परंतु गिरेंगे नहीं। जकरिया के पुस्तक 8 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा यों कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। ध्यान दीजिए, वे इतना तो जानते ही थे कि यह भविष्यवाणी उस समय पूरी नहीं हुई थी, वरन भविष्य के लिए थी, यह आज भी पूरी नहीं हुई है। परमेश्वर स्पष्ट करता है कि वह सियोन लौटेगा और यरूशलेम के मध्य वास करेगा। लिखा है, और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा। आज इस नगर में इतने धर्म हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लगभग हर एक मसीही संस्था का वहां कार्यालय है, और धार्मिक पंथों एवं संप्रदायों की तो आप कल्पना ही ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आज वह नगर सत्य का स्थान नहीं है। कहता है, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। आज वहां पवित्र कहने को कुछ भी नहीं है। जब वह आ जाएगा तब वहां पवित्रता होगी। यह भविष्यवाणी अभी दूर है। लिखा है, यहोवा यों कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। यशाया नबी ने स्पष्ट कहा है कि यरूशलेम संसार की राजधानी होगा। यशाया की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, आमोस के पुत्र यशाया का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर एक जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। जकर्या यहां भविष्य को निहारते हुए अपनी प्रजा को प्रोत्साहित कर रहा है। उनकी आज की दशा भविष्य की दशा से भिन्न है। जी हां, उनकी आज की दशा भविष्य की महान महिमा की एक झलक है। परमेश्वर रीतियों प्रथाओं को नहीं मानता है, परंतु वह आपके मन को देखता है। जी हां, वह उनके मन को बदल देगा। परमेश्वर का वचन यरूशलेम से प्रवाहित होगा और वह नगर सच्चाई का एक स्थान होगा। यशाया नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन सियोन से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा, वह देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार कभी न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। परंतु आज हम इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, अतः हमें अपना बारूद सूखा रखना है। परंतु निश्चय ही भविष्य में एक दिन यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। यह भावी प्रभु राज की चर्चा है। मेरे मित्रों, यह किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, परंतु परमेश्वर की वाणी है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को रचा है और वह चाहता है कि जगत में शांति हो, और जगत कर्ता एक ही है और वही परमेश्वर फिर से आएगा और जगत में शांति देगा। क्या आप नहीं चाहते कि आप उस परमेश्वर की निकटता में आए, उसको जाने और उसकी निकटता में आकर के आप उसकी महिमा करें? मेरे प्रियो, आइए आज के इस वचन के प्रकाशन में हम भी अपने आप को प्रभु की निकटता में लाएं, सत्यता को जानें और परमेश्वर पिता को अपने जीवन में अपने कार्यों को करने दें, ताकि हम ईश्वर के द्वारा से उद्धार पाकर अपने जीवन में शांति को पा सकें। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने बहुत ही गंभीर बातों को सीखा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
Yeah।